नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। चुनाव परिणामों से पहले रणनीतिक तैयारी के लिए आज नई दिल्ली में एनडीए नेताओं की बैठक। उच्चतम न्यायालय में काला धन कानून 2016 को पूर्व प्रभाव से लागू मानने की अधिसूचना पर दिल्ली उच्च न्यायालय की रोक को चुनौती देने वाली केंद्र की याचिका पर आज सुनवाई। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज शंघाई सहयोग संगठन की विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज किर्गिस्तान रवाना होंगी। जोको विदोदो दूसरे कार्यकाल के लिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति चुने गए और गुवाहाटी में इंडिया ओपन इंटरनेशनल मुक्केबाजी प्रतियोगिता में सातों भारतीय मुक्केबाजों ने अपने शुरुआती मुकाबले जीते। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के वरिष्ठ नेताओं की बृहस्पतिवार को लोकसभा चुनाव परिणामों की घोषणा से पहले आज नई दिल्ली में बैठक होगी। रात्रि भोज पर आयोजित होने वाली इस बातचीत में भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह सहित गठबंधन के अन्य नेता आगे की रणनीति तैयार करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड प्रमुख नीतीश कुमार, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख रामविलास पासवान के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी इस बैठक में शामिल होने की संभावना है। एनडीए नेताओं की बातचीत से पहले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक पार्टी मुख्यालय में होगी। विपक्ष के कई नेता आज नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग से मिलेंगे और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ मतदान पुष्टि पर्ची मिलान का मुद्दा उठाएंगे। किसी मतदान केंद्र पर अंतर पाए जाने की स्थिति में विपक्षी दल पूरे विधानसभा क्षेत्र की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के वोटों की पुष्टि पर्ची से मिलान की मांग कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से देश के प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 5 मतदान केंद्रों के मत आंकड़ों का मतदान पुष्टि पर्ची के साथ मिलान करने को कहा है। इस व्यवस्था के कारण चुनाव परिणामों में विलम्ब हो सकता है। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने मतदान के बाद के सर्वेक्षण पर संदेह करने वालों की आलोचना करते हुए कहा है कि जब अनेक सर्वेक्षण एक ही संदेश देते हैं तो परिणाम की दिशा मोटे तौर पर संदेश के अनुरूप होगी। फेसबुक पर अपने ब्लॉग में जेटली ने कहा कि मतदान बाद सर्वेक्षण व्यक्तिगत साक्षात्कार पर आधारित हैं और ईवीएम की इसमें कोई भूमिका नहीं है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लोकसभा चुनाव सटीक ढंग से संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग की भूमिका की सराहना की है। कल नई दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन समारोह में श्री प्रणब मुखर्जी ने कहा कि पहले निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन से लेकर मौजूदा निर्वाचन आयुक्तों तक आयोग की भूमिका बहुत ही प्रभावशाली रही है। अरुणाचल प्रदेश में 2 मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान हो रहा है। इनमें कोलोरियांग विधानसभा क्षेत्र का नामपे और ताली विधानसभा सीट का गिम्बा मतदान केंद्र शामिल है। ये दोनों निर्वाचन क्षेत्र अरुणाचल पश्चिम संसदीय सीट में आते हैं। सुबह 6 बजे से शुरू हुआ मतदान दोपहर 2 बजे समाप्त होगा। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने कल नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग से मुलाकात की और विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में दोबारा मतदान कराए जाने की मांग की। बैठक के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पत्रकारों से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं को धमकी देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने आयोग से मामले का संज्ञान लेने का अनुरोध किया है।
हमने रिक्वेस्ट किया माननीय कमीशन को कि सभी ईवीएम स्ट्रांग रूम्स पे सेंट्रल फोर्सेस बड़े पैमाने पे तैनात करी जाए। काउंटिंग तक और काउंटिंग के बाद भी जब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है तब तक ये फोर्सेस पश्चिम बंगाल में रखी जाए।
निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले के भाटापारा में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। रविवार को विधानसभा उपचुनाव के दौरान हुई हिंसा के बाद ये निर्णय लिया गया। निर्वाचन आयोग के अधिकारी ने कल कोलकाता में संवाददाताओं से कहा कि भाटापारा में संवेदनशील स्थिति को देखते हुए धारा 144 लागू करने का फैसला किया गया है। छत्तीसगढ़ में मतगणना की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। लोकसभा चुनाव में पहली बार ईवीएम परिणामों का वीवीपैट पर्चियों से मिलान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्य चुनाव अधिकारी सुब्रत साहू ने बताया कि हर एक विधानसभा क्षेत्र के किसी 5 मतदान केंद्र पर चुनाव परिणामों का वीवीपैट से मिलान किया जाएगा।
सुरक्षा के उद्देश्य से वीवीपैट मशीनों के पर्चियों की गणना हेतु एक जालीदार तार से घिरे हुए कक्ष का निर्माण किया जा रहा है। इसी कक्ष में वीवीपैट मशीनों की पर्चियों की गणना की जाएगी। जिन कंट्रोल यूनिट से परिणाम प्राप्त नहीं हो सकेंगे, उन कंट्रोल यूनिट से संबद्ध वीवीपैट मशीन से भी परिणाम की गणना भारत निर्वाचन आयोग से अनुमति मिलने पर इसी प्रक्रिया अनुसार की जाएगी।
जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग की 2 लोकसभा सीटों उधमपुर और जम्मू के लिए मतगणना तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
जम्मू संसदीय सीट के लिए चुनाव मैदान में जो उम्मीदवार हैं, उनमें सबसे उम्रदराज जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के संरक्षक प्रोफेसर भीम सिंह हैं, जबकि 25 वर्षीय निर्दलीय उम्मीदवार अनिल सिंह सबसे कम उम्र के प्रत्याशी हैं। उधमपुर संसदीय सीट के लिए शिवसेना द्वारा चुनाव मैदान में उतारी गई मीनाक्षी इकलौती महिला प्रत्याशी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अलावा कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के हरदेव सिंह चुनाव मैदान में हैं, जबकि जम्मू संसदीय सीट से मुख्य मुकाबला भाजपा के जुगल किशोर शर्मा, कांग्रेस के रमन बल्ला और जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के प्रोफेसर भीम सिंह के बीच है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से आरके रैना।
तमिलनाडु में 38 सीटों के लिए लोकसभा चुनाव हुए और 22 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव हुए। राज्य में भीषण गर्मी के बावजूद मतदाताओं ने उत्साह से अपने मताधिकार का प्रयोग किया। एक रिपोर्ट।
शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने के लिए मतदाताओं को जागरूक करने के क्रम में कामराजार, सालेह, मरीना बीच, रेलवे स्टेशन, अस्पताल और बस अड्डों पर बैनर लगाए गए थे। कई रेस्तरा मालिकों ने मतदान को अनूठे अंदाज में प्रोत्साहित किया। इसके लिए उन्होंने मतदान करके आने वालों को दोपहर का मुफ्त भोजन का ऑफर दिया। युवाओं ने मतदान के बाद लोकतंत्र में जिम्मेदारी की प्रतीक नीली स्याही लगी उंगली को गौरवान्वित होकर प्रदर्शित किया। कई नवविवाहित जोड़े विवाह स्थल से सीधे मतदान केंद्र पहुंचे और अपने अधिकार का प्रयोग किया। चेन्नई से एस जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से देवेंद्र त्रिपाठी।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
चुनाव परिणामों की लगातार 24 घंटे ताजा और विश्वसनीय खबरें 23 और 24 मई को समाचार सेवा प्रभाग के विशेष जनादेश 2019 कार्यक्रम पर।
देश के कोने कोने से आकाशवाणी संवाददाता बताएंगे लोकसभा और 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों का ताजा हाल।
स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञ करेंगे चुनाव नतीजों का विस्तृत और गहन विश्लेषण। आप इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हमारे FM गोल्ड चैनल और अन्य चैनलों पर सुन सकते हैं। ये प्रसारण YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा।
नवीनतम परिणामों के लिए हमारी वेबसाइट www.newsonair.com देखें और फॉलो करें हमारा ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi।
उच्चतम न्यायालय आज केंद्र की उस याचिका की सुनवाई करेगा जिसमें 2016 का कालाधन कानून जुलाई 2015 से प्रभावी माने जाने की अधिसूचना पर दिल्ली उच्च न्यायालय के स्थगन को चुनौती दी गई है। केंद्र उच्च न्यायालय के उस फैसले से भी असंतुष्ट है जिसमें अंतरिम आदेश के अंतर्गत वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में आरोपी गौतम खेतान के खिलाफ आयकर विभाग को कार्रवाई से रोक दिया गया था। खेतान के खिलाफ कालेधन का मामला भी दर्ज है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज शंघाई सहयोग संगठन SCO के विदेश मंत्रियों की परिषद में भाग लेने के लिए आज किर्गिस्तान के बिश्केक के लिए रवाना होंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत दूसरी बार परिषद की बैठक में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होगा।
इस बैठक में बिश्केक में अगले महीने की 13 तारीख से होने वाली SCO शिखर सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय महत्व के मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अप्रैल 2018 में हुई पिछली बैठक में भी हिस्सा लिया था। श्रीमती स्वराज बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के अन्य विदेश मंत्रियों के साथ किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सुरानबे जीनबेकोव से भी मुलाकात करेंगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत ने किर्गिस्तान की अध्यक्षता में हुई संगठन के सभी संवादों में सक्रियता से भाग लिया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
इंडोनेशिया में जोको विदोदो फिर से राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी प्रबोवो सुबियांतो को हराया है। इंडोनेशिया के चुनाव आयोग के अनुसार विदोदो ने 55.5% वोटों के साथ जीत हासिल की। पाकिस्तान ने राजनयिक मुइनुल हक को भारत में नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने कल भारत, चीन, जापान सहित कई देशों में नए राजदूतों की नियुक्ति को मंजूरी दी। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 28वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। 1991 में आज ही के दिन तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में आत्मघाती बम हमले में उनकी हत्या कर दी गई थी। राजीव गांधी की पुण्यतिथि आतंकरोधी दिवस के रूप में भी मनाई जाती है। गुवाहाटी में दूसरी इंडिया ओपन इंटरनेशनल मुक्केबाजी प्रतियोगिता में कल सभी सात भारतीय मुक्केबाजों ने अपने शुरुआती मुकाबले जीत लिए हैं। मैरीकॉम 51 किलोग्राम भार वर्ग में नेपाल के प्रतिद्वंद्वी के साथ आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। पुरूषों में ब्रजेश यादव, संजय नमन तंवर, संजीत सतीश कुमार और अतुल ठाकुर सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। 5 दिन की मुक्केबाजी प्रतियोगिता कल समाप्त हो रही है। सुधीरमन कप बैडमिंटन टूर्नामेंट में चीन में आज भारत ग्रुप 1D में मलेशिया के साथ खेलेगा। टूर्नामेंट के 13 सदस्यीय भारतीय दल में किदांबी श्रीकांत, समीर वर्मा, सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी, मनु अत्री, सुमित रेड्डी और प्रणव चोपड़ा तथा पीवी सिंधु, सायना नेहवाल, अश्विनी पुनप्पा, सिक्की रेड्डी, पूर्विशा एस राम और जे मेघना शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध हैं।
लोकसभा और विधानसभा चुनाव परिणामों पर समाचार सेवा प्रभाग का विशेष जनादेश 2019 कार्यक्रम उत्तर से लेकर दक्षिण तक।
आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से आरके रैना।
दिवाकर, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी।
हैदराबाद से लक्ष्मी।
पूर्वोत्तर से पश्चिम तक।
आकाशवाणी समाचार के लिए ईटानगर से मैं राकेश डोले।
पटना से केके लाल।
अहमदाबाद से योगेश पंड्या।
देश भर से आकाशवाणी संवाददाता बताएंगे विश्वसनीय और ताज़ा हाल। विशेषज्ञों द्वारा चुनाव परिणामों का विस्तृत और गहन विश्लेषण 23 मई सुबह 7 बजे से 24 मई रात 11 बजे तक आकाशवाणी के FM गोल्ड और अन्य चैनल पर।
और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है विशाल शर्मा।
धन्यवाद चंद्रिका। चुनाव परिणामों से पहले विपक्षी दलों और सत्ता पक्ष की किलेबंदी शुरू करने के दिग्गज नेताओं के प्रयासों को लगभग सभी अखबारों ने सुर्खियों में दिया है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है सियासी मुलाकातें तेज हुई। अमर उजाला ने निर्वाचन आयोग के हवाले से खबर दी है इस बार इतिहास में सबसे अधिक 67.11% मतदान हुआ। शेयर बाजार के 10 साल में सबसे बड़ी उछाल भी लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। एक दशक का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद शेयरों की कीमत में 5.33 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी का हिसाब अखबारों ने दिया है। इकोनॉमिक टाइम्स लिखता है विशेषज्ञों के अनुसार नतीजे अगर एग्जिट पोल जैसे रहे तो बाजार में बनी रहेगी तेजी। नवभारत टाइम्स ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निर्वाचन आयोग की भूमिका की सराहना को अहमियत देते हुए लिखा है प्रणब मुखर्जी ने कहा देश की संवैधानिक संस्थाएं अच्छा काम कर रही हैं, हमें इन्हें मजबूत करना होगा। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को युवाओं को आतंकवाद से दूर रखने के लिए चर्चा, संगोष्ठी तथा आतंक से दूर रहने की शपथ जैसे कार्यक्रम के निर्देश दैनिक ट्रिब्यून में हैं। फ्रांस के कान फिल्मोत्सव में रेड कार्पेट पर भारतीय सितारों के चित्र भी कुछ अखबारों ने दिए हैं।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चुनाव परिणामों से पहले रणनीतिक तैयारी के लिए आज नई दिल्ली में एनडीए नेताओं की बैठक। उच्चतम न्यायालय में कालाधन कानून 2016 को पूर्व प्रभाव से लागू मानने की अधिसूचना पर दिल्ली उच्च न्यायालय की रोक को चुनौती देने वाली केंद्र की याचिका पर आज सुनवाई। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज किर्गिस्तान रवाना होंगी। जोको विदोदो दूसरे कार्यकाल के लिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति चुने गए और गुवाहाटी में इंडिया ओपन इंटरनेशनल मुक्केबाजी प्रतियोगिता में सातों भारतीय मुक्केबाजों ने अपने शुरुआती मुकाबले जीते। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।